आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है।
बसंत ऋतु नई जिंदगी लेकर आती है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में पॉलन के मौसम की शुरुआत भी है। इससे होने वाली एलर्जी को नियंत्रित करना सीखना आपके और आपके परिवार के लिए आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस अंश में बात इसी पर, और मैं हूँ अनीता बरार। आपकी आंखों में खुजली, नाक का बहना और लगातार छींके आना, ये है हे फीवर या मौसमी एलर्जिक राइनाइटिस। और अगर पॉलन आपके फेफड़ों तक पहुंच गया तो ये एलर्जी से होने वाले अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे आम एलर्जी संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हैं, और संभावना है कि आप या आपका कोई करीबी इससे प्रभावित भी हो। इसके बारे में और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं एडजंक्ट एसोसिएट प्रोफेसर जॉय ली, जो रेस्पिरेटरी एंड एलर्जी फिजिशियन और नेशनल एलर्जी सेंटर ऑफ एक्सलेंस में रेस्पिरेटरी एलर्जी स्ट्रीम में सह अध्यक्ष हैं।
Grass pollen is a major cause of allergic rhinitis, also known as hay fever, and seasonal allergic asthma. So together these are known as respiratory allergies. Respiratory allergy is actually the most common allergic problem in Australia. About a quarter of the Australian population can be said to be affected by hay fever, and about 10%, nearly like 3 million, will have asthma. And also the two often coexist. So if you have one, you have a high risk of having the other.
प्रोफेसर ली बताती हैं कि राई ग्रास से निकलने वाला परागकण यानी पोलन ऑस्ट्रेलिया में विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी राज्यों विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और ACT में एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर का एक मुख्य कारण है।
It's an introduced grass, so it tends to be these introduced grasses that are more the issue rather than native grasses. And that starts pollinating in September, October, peaking in November, with the end of the season coming towards December and January. Other parts of Australia, like Queensland, for example, there may be more tropical grasses, and they may have later seasons, so they might go into the summer, like January, February, March.
अगर आपको hay fever होता है, तो इसका अर्थ है कि आपका immune system, जो आमतौर पर आपको बीमारियों से बचाता है, वो pollen पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया कर रहा है, और ये आपके नाक, आँखों या श्वास नली में सूजन पैदा कर देता है।
So when it's in contact with the eyes and nose, for example, that triggers the symptoms of hay fever, what we call inflammation, which is like a release of different chemicals from cells, which causes things like swelling, itching. If we inhale it lower into our respiratory systems, and then you get inflammation in the airways and the lungs, and then you get your symptoms of asthma.
अगर आप hay fever और बसंत ऋतु में होने वाली एलर्जी को लेकर चिंतित हैं, तो आपके स्थानीय GP या फार्मासिस्ट जैसे हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लेना सबसे अच्छा विकल्प है। डॉक्टर डंकन मैकिनन रीजनल न्यू साउथ वेल्स में एक GP हैं। उनका कहना है कि वसंत और गर्मियों के दौरान उनके क्लिनिक पर लगभग एक चौथाई लोग हे फीवर और एलर्जी से होने वाले अस्थमा जैसी समस्याओं के होते हैं।
The important thing to do is teach people, give them the information so that they can manage these conditions themselves. And if you teach them how to help themselves, how to avoid it and what to treat it with, and most of this is treated with over-the-counter medications. And I think the most important thing with asthma is that if you have a cough, you're wheezing and you find it difficult to catch your breath, and it's the first time this has happened, you need to seek medical advice.
Antihistamine or nasal spray jaisi over-the-counter dawaein aapke sthaniye pharmacy par uplabdh hain aur hay fever ke kuch samanya lakshanon se rahat dilane mein madad kar sakti hain. Halanki dhyan rakhna aavashyak hai ki lakshanon ki shuruaat ko kaise kam kiya jaye ya roka jaye, sath hi jo lakshan viksit hote hain unse राहत कैसे पाई जाए। निवारक उपचारों के संदर्भ में आपका डॉक्टर कभी कभी एलर्जी जन्य सूजन के लिए कार्टिकोस्टेरॉइड दवा की सिफारिश कर सकता है, जैसे कि हे फीवर के लिए इंट्रानेजल कार्डियोकोस्टेरॉइड या एलर्जी प्रेरित अस्थमा के लिए इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड।
रियल मैनेजमेंट ऑफ दीज थिंग्स इज वेरी वेरी लो डोज स्टेरॉइड्स इन अ नेजल स्प्रे or an oral spray that we might choose to use. If you use a steroid, it takes a week to start to work because they're very low dose, but you need to start taking it now so that in a week's time, you're not suffering from the same problem.
प्रोफेसर ली ने भी यही सलाह दोहराई कि लक्षणों की गंभीरता के आधार पर एलर्जी के लिए विभिन्न तरह के नैदानिक परीक्षण और उपचार उपलब्ध हैं। प्रोफेसर ली का कहना है कि हवा में पॉलन की मात्रा रोजाना बदलती है। पॉलन काउंट और फोरकास्ट रिसोर्सेस ऑनलाइन और मोबाइल फोन ऐप के जरिए उपलब्ध ही हैं, तो आपको पहले से ही जानकारी है और एहतियात किए जा सकते हैं।
So they can help predict if it's going to be a very bad pollen day. So often it gets graded like mild, moderate, severe, extreme. So if you know it's going to be an extreme pollen day and you're susceptible to that, probably want to try and make plans to not be outside too much on that day.
वसंत ऋतु में एलर्जी के मौसम के दौरान कुछ विशेष मौसम संबंधित घटनाओं के बारे में भी सचेत रहना चाहिए, जिसमें थंडर स्टॉर्म अस्थमा शामिल है, जब उच्च पॉलन वाले दिन आंधी तूफान आता है। इन मौसम की घटनाओं के दौरान एलर्जी और अस्थमा के प्रति संवेदनशील लोगों के लिए डॉक्टर मैकिनन ने खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने, बाहर जाने से बचने की सलाह दी है, और यदि आपको बाहर जाना ही पड़े तो धूप का चश्मा और फेस मास्क पहनने पर विचार करें।
In terms of asthma, which can be life-threatening, it's really important that the diagnosis is made and that you become familiar with the treatment strategies. If you're finding it difficult to breathe, really difficult to breathe, you call an ambulance. But if you are finding it difficult to breathe, you can go to an urgent care clinic, you can go to your GP, or you can go to your hospital.
Professor Lee ka kehna hai ki vasant ritu mein hone wali allergy ke liye tayar rehne ka matlab ek management plan banana hai.
ये एक SBS ऑडियो पॉडकास्ट था। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के और दूसरे पॉडकास्ट के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाएं।